नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेश निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचा। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों को पीएनजी कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मध्य एशिया में फंसे श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेश रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। इस परियोजना का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का योगदान रहा है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की मुहिम के अनुरूप है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच स्पष्ट किया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।
There has been no unusual volatility.
जरूरी सामानों की कीमतों में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। इस साल दालों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। सरकार दालों का भंडार सुरक्षित रखती है और फिलहाल हमारे पास लगभग 28 लाख मीट्रिक टन दाल का स्टॉक मौजूद है।
लाख मीट्रिक टन।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल का पर्याप्त बफर स्टॉक है।
और वीट वी हैव अराउंड गेहूं का हमारे पास लगभग 220 लाख मीट्रिक टन भंडार है और चावल का करीब 330 लाख मीट्रिक टन। दोनों मिलाकर कुल करीब 620 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद देश में खाने की तेल की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। प्रमुख देशों से आयात लगातार जारी है, इससे कुल आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगी।
एंड विल इंटरवीन इफ रिक्वायर्ड।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पिछले दो दिनों में भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी जहाज ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से निकल चुके हैं।
ग्रीन सांगवी पे करीब 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी कार्गो है, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मेट्रिक टन एलपीजी कार्गो है। वर्तमान में वेस्टर्न पर्शियन गल्फ रीजन में 16 भारतीय फ्लैग्ड वेसल्स मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं, ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए।
राज्य सरकार ने प्रदेश में तेल कंपनियों को पीएनजी आपूर्ति प्रणाली के विस्तार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उच्च स्तरीय बैठक में अरवल, गया, कैमूर, रोहतास, सारण और पश्चिम चंपारण जिलों में एलपीजी सिलेंडर की बैकलॉग की समस्या पाई गई है। हालांकि इन जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने नोडल विभाग को प्रति सप्ताह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और प्रमंडलीय आयुक्तों तथा प्रभारी सचिवों को नियमित रूप से जिलों का दौरा कर कार्यों की भौतिक जांच करने के निर्देश दिए हैं। इधर मध्य एशिया में जारी संघर्ष के बीच वहां फंसे अपने श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0612-252-0053 और व्हाट्सएप नम्बर 7368-855-002 जारी किया गया है। कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा और सैनिकों का काम प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। श्री सिन्हा ने कहा कि मामलों के निस्तारण में लागू पहले आओ पहले पाओ फीफो प्रणाली को 30 जून तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में विशेष श्रेणी के आवेदनों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इधर आज पटना में राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR की बैठक हो रही है, जिसमें दाखिल खारिज, अपीलवाद, राजस्व वसूली और भूमि बैंक से जुड़े कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 258 चयनित कलाकारों के खाते में 3000 रुपए की पेंशन राशि भेजी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से जल्द ही 100 अन्य कलाकारों के पेंशन आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। इस योजना के तहत कला के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक की सेवा देने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकार आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कल और परसों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
24 घंटों के दौरान राज्य के बेगूसराय, नालंदा, नवादा एवं शेखपुरा जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा ओलावृष्टि के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों गया, जहानाबाद, लखीसराय एवं पटना जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम में बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इस अवधि में 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार का एथेनॉल का कोटा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से भेजे गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का लाभ तकनीकी कारणों से पुराने निवेशकों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुराने निवेशकों को भी नई नीति का लाभ दिया जाएगा। मखाना उत्पादन में नवाचार के लिए प्रदेश को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा दिया जाता है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस सम्मान के लिए उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार सहित टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में किशनगंज के पूर्व SDPO गौतम कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई होगी। इधर कल आर्थिक अपराध इकाई EOU के पटना कार्यालय में आरोपी SDPO से पूछताछ की गई। इससे पहले EOU ने 31 मार्च को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। बिहार फुटबॉल संघ की कार्यकारिणी की बैठक में रेफरी बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में खतीब अहमद की अध्यक्षता में बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के छठे दिन बिहार की टीम रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक से 2-1 से हार गई। लखीसराय में चल रही राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मुंगेर ने वैशाली को 4-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर और कैमूर के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर ने 1-0 से जीत दर्ज की है। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का ताइक्वांडो एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। चयनित खिलाड़ियों की सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भेजी जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समाहरणालय सभागार में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में 35 मामलों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिवहर जिले के तरियानी छपरा में 12 मार्च को शादी समारोह में गोलीबारी की घटना के बाद फरार एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लाखों रुपए की नशीली पदार्थ के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मध्य एशिया तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ईरान को एक रात में पूरी तरह तबाह कर देंगे। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, ट्रंप ने चेताया, अब नहीं बढ़ेगी डेडलाइन, ईरान ने ठुकराया अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव। दैनिक भास्कर ने अपनी खास खबर पर लिखा है, बिहार में उद्योगों का महासंकल्प, हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 20 लाख को नौकरी, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज। प्रभात खबर ने पर्यटन से जुड़ी खबर पर लिखा है, 8 जगहों के लिए हेलीकॉप्टर से टूरिज्म। आज अखबार की सुर्खी है, जहरीली शराब के मास्टरमाइंड का सरेंडर। राष्ट्रीय सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा अगला मिशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेश निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचा। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों को पीएनजी कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मध्य एशिया में फंसे श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।